लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि अपनी अस्मिता और अस्तित्व के खो जाने का खतरा उठा रहे देशज लोगों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाए। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओ, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा याचना के गीत निहित हैं। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं और अड़चनों को जीवन से दूर रखें। ऐसा लगा कि वे कुल्हाड़ी घुमाकर झाड़ झंकाड़ काट रहे हैं। उन्होंने कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से मंदिर के सभी उत्कीर्ण द्वार टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने तेरे मंदिर में आग लगाई, तेरे नाम का निवास स्थान ढाकर दूषित कर दिया। उन्होंने अपने मन में कहा, हम उनका सर्वनाश करें, हम देश भर के सब सभागृह जला दें। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 74वें भजन के 5 से लेकर 8 तक के पद। विगत सप्ताह हमने इन्हीं पदों के पाठ से पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम की व्याख्या समाप्त की थी। 74वें भजन का रचयिता जेरूसलम के मंदिर के विनाश पर विलाप करता है, क्योंकि यही शहर इजरायली जाति के लिए संदर्भ बिंदु था। ईश प्रतिज्ञा के अनुसार जेरूसलम शहर ही राष्ट्रों के मिलन बिंदु और ईश प्रजा के प्रतिज्ञात शहर रूप में चुना गया था। यही था वह शहर जहां ईश्वरीय मुक्ति योजना की प्रमुख घटनाएं भी घटी। इस भजन में ईश प्रजा रोते हुए ईश्वर को पुकारती है और कहती है, ईश्वर तूने हमें क्यों त्याग दिया है, क्यों तेरा क्रोध हम पर बना हुआ है। भजन के 5 से लेकर 8 तक के पदों में भी मंदिर के विनाश का भयंकर दृश्य देखने को मिलता है, जिसमें ईश्वर के विरोधी घृणा का विभत्स प्रदर्शन कर जानबूझकर ईश्वर के पवित्र नाम को और उनके पवित्र स्थल को अपवित्र करने का दुस्साहस करते हैं। सर्वोच्च प्रभु और न्यायप्रिय ईश्वर के पवित्र स्थल पर वे प्रहार करते हैं। श्रोताओ, प्राचीन व्यवस्थान के युग से लेकर नवीन व्यवस्थान तक ईश्वर को और उनके द्वारा चुने हुए लोगों को पवित्र नाम से पुकारा गया, किंतु प्रश्न यह उठता है कि सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर ने क्यों अपने पवित्र निवास स्थान, अपने मंदिर और अपनी प्रजा पर दुष्टों को विजयी होने दिया। क्यों प्रभु ईश्वर बुराई और भलाई के बीच अनंत युद्ध में पराजित होते प्रतीत हुए। क्यों बारंबार ईश प्रजा को 22वें भजन के अनुसार यह कहना पड़ा, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है, तू मेरी पुकार सुनकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करता। यही पुकार सदियों तक गूंजती रही और अंततः स्वयं प्रभु यीशु मसीह की आहों में इसे अभिव्यक्ति मिली। क्रूस पर टंगे येसु ख्रीस्त पुकार उठते हैं, एली एली लेमा सबाक्थानी, अर्थात मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है।
मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मेरी विनय पुकारो को क्यों प्रभु वर इतना दूर किया है। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है।
श्रोताओ, स्तोत्र ग्रंथ के 74वें भजन में ध्यान देने वाली बात यह कि दुष्कर्मियों की गतिविधियां केवल बाहरी विनाश तक ही सीमित नहीं रहीं, अपितु वे ईश्वर के पवित्र नाम के निवास स्थान को मिटा डालना चाहते थे। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 25वें अध्याय में बाबुल के दुष्ट राजा नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम के विनाश का विवरण मिलता है। इसके 9वें और 10वें पदों में हम पढ़ते हैं, उसने प्रभु का मंदिर, राजा का महल और यरूशलेम के सब घर जला डाले। उसने यरूशलेम के सबसे बड़े भवन ध्वस्त कर दिए। अंग रक्षकों के नायक के साथ जो खलदेई सेना आई थी, उसने यरूशलेम की चार दीवारी गिरा दी। आगे 74वें भजन के 9वें, 10वें और 11वें पदों में हम पढ़ते हैं, हमें कोई चिन्ह नहीं दिखाया जाता, एक भी नबी शेष नहीं रहा, हम में कोई नहीं जानता कि कब तक ऐसा रहेगा। प्रभु, बैरी कब तक तेरी निंदा करता रहेगा? क्या शत्रु तेरे नाम का उपहास करता रहेगा? तू क्यों अपना हाथ खींचता है? क्यों अपना दाहिना हाथ अपने सीने में छिपाता है? प्रभु यावे की भक्ति को पूर्णतया बंद करने के अभिप्राय से दुष्टों ने यरूशलेम के मंदिर के अतिरिक्त यूदा के सभी गांवों के प्रार्थना स्थलों को भी नष्ट कर दिया था। इन स्थलों पर समुएल नबी से लेकर अब तक पुरोहित और लेवी वंश के याजक ईश्वर विषयक बातों की व्याख्या किया करते थे, जिसका उन्होंने अंत कर दिया था। लोग कहने लग गए थे, हमें हमारे प्रतीक नहीं मिल रहे हैं, हमारे चिन्ह नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि अर्का, मंदिर और याजक। उनके स्थान पर बाबुल के लोगों ने अपने बुतों को स्थापित कर दिया था। इसीलिए 74वें भजन के 4थे पद में भजनकार कहता है, तेरे बैरियों ने तेरे प्रार्थना गृह में शोर मचाया और वहां अपने विजयी झंडे फहराए। इससे स्पष्ट है कि ईश्वर के शत्रु इस धरती पर नर्क बनाने में सफल हो गए थे। उनका ईश निंदक कृत्य केवल प्रभु के विरुद्ध नहीं, अपितु ईश इच्छा के विरुद्ध था, क्योंकि वह ईश्वरीय अनंत योजना का अंग नहीं अपितु घोर विनाश का अंग था। श्रोताओ, क्या आज भी ऐसा नहीं हो रहा? क्या आज भी लोग अपने स्वार्थ के लिए पवित्र स्थलों का विनाश नहीं कर रहे? क्या आज भी ईश्वर के नाम का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा? अपने मलिन उद्देश्यों के लिए आज भी कुछ एक लोग ऐसे हैं जो ईश्वर के नाम से ही इनकार कर देते हैं, ईश्वर के नाम पर निर्मित स्थलों में तोड़फोड़ मचाते हैं, ईश्वर का नाम लेकर लोगों की जमीनें हड़प लेते हैं, उनके आराधना स्थलों को नष्ट कर उनके घरों को आग के हवाले कर देते हैं। आप इन लोगों को कोई भी नाम दे दें, चाहे इन्हें आप उग्रवादी, चरमपंथी, रूढ़िवादी अथवा धर्मांध किसी भी नाम से पुकार लें, वास्तव में जो लोग ऐसे घृणित कृत्य करते हैं वे अपने कुकृत्यों का औचित्य ठहराने का हर संभव प्रयास करते हैं, किंतु सच तो यह है कि ऐसे कुकृत्यों का कोई औचित्य नहीं होता। किसी भी बहाने ईश्वर के पवित्र नाम और उनके पवित्र स्थल को नहीं मिटाया जा सकता, और जो लोग ऐसा करने का दुस्साहस करते हैं वे मनुष्यों के विरुद्ध पाप तो करते ही हैं, किंतु स्वयं सृष्टिकर्ता ईश्वर का अपमान करते हैं।
मुझे भला क्यों त्याग दिया।